समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
सुप्रभात। कार्यक्रम आज सवेरे में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज और मेरे साथ हैं आज रेनु कटारिया। आपकी सुबह खास बनाने के लिए पूरे आधे घंटे हम आपको देंगे देश और दुनिया के समाचार और वो सभी जानकारी जो आपसे जुड़ी हुई है। और आज के अंक में बहुत कुछ होगा खास और आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बजट भी पेश करेंगे। ऐसा पहली बार है जब रविवार को बजट पेश किया जा रहा है। और इसके अलावा महानगरों की खबरों के साथ मौसम का हाल जानेंगे और अंत में कुछ शख्सियतों को भी हम याद करेंगे। तो आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं। नमस्कार रेनु।
Namaskar, good morning and a very warm welcome Farhat and a very warm welcome to all our listeners tuned into Akashvani FM Gold on 100.1 megahertz and the Akashvani network. So directly let's go on to the news headlines. Finance Minister Nirmala Sitharaman will present the Union Budget 2026-27 in the Lok Sabha today. After presentation of the budget in the lower house, the copy of the budget will be tabled in the Rajya Sabha. It will be the third budget of the Narendra Modi government in its third term. Before the budget preparation, the finance minister held pre-budget consultations meetings with several stakeholders, including experts and representatives from economists, trade unions, education and health sector, MSME, trade and services, industry, financial sector and capital markets. Agriculture Minister Shivraj Singh also held extensive pre-budget consultations on various aspects related to agriculture and rural development and submitted compiled report of suggestions to the Finance Minister. Our correspondent has the details.
Finance Minister is set to present a record 9th consecutive Union Budget since assuming office in 2019. In her budget speech, she will outline the government's revenue and expenditure plans for the next financial year. The budget is expected to outline the government's economic roadmap for the coming year, with a focus on growth, employment generation and fiscal stability. During the course of budget preparation, various inputs have been sought from the citizens, including youth, through various platforms, which will reflect in the budget. The budget documents will be available on the Union Budget mobile app and the website after the completion of the budget speech in Parliament. After the presentation of the budget, Finance Minister will interact with around 30 college students from different regions of the country. The budget session, which began on 28th January, will continue till 2nd April. With Dipendra Kumar, Suparna Sekia, Akashwani News, Delhi.
Kendriya Budget 2026-27 आकाशवाणी समाचार के साथ केंद्रीय बजट पर होगा विस्तृत विश्लेषण दिन भर।
सुनिए विशेषज्ञों की राय, विशेष बजट बुलेटिन,
बजट पर जनमानस की प्रतिक्रिया और विशेष साक्षात्कार।
बजट से जुड़ी हर जानकारी पहुंचेगी आप तक
1 फरवरी रविवार सवेरे 10:10 से रात 10 बजे तक
आकाशवाणी FM गोल्ड
और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर।
In a break from the usual weekend routine, the Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange will hold a live trading session today, despite it being a Sunday. Earlier this month, the exchanges informed investors that trading will proceed during regular hours from 9:15 a.m. to 3:30 p.m. IST, while the commodity market will extend its trading until 5 p.m. IST.
संत रविदास की जयंती आज पूरे देश में मनाई जा रही है। वे 14वीं शताब्दी के संत और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के संस्थापक थे। ये दिवस हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस अवसर पर श्रद्धालु वाराणसी में गुरु रविदास जन्मस्थान मंदिर गोवर्धनपुर में एकत्रित होते हैं और उनकी जयंती मनाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरु रविदास की जयंती पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज इस अवसर पर पंजाब का दौरा भी करेंगे। श्री मोदी आदमपुर हवाई अड्डे पर जाएंगे और वहां इनका नाम बदलकर श्री गुरु रविदास जी हवाई अड्डा आदमपुर रखेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि पूजनीय संत और समाज सुधारक को सम्मान देने के लिए यह नामकरण किया गया है। गुरु रविदास जी की समानता, करुणा और मानवीय गरिमा की शिक्षाएं भारत के सामाजिक मूल्यों को प्रेरित करती रही हैं।
The Indian Coast Guard is commemorating its 50th Raising Day today, marking nearly 5 decades of dedicated, selfless service to the nation. From its beginning in 1977 with just 7 surface platforms, the Indian Coast Guard has evolved into a formidable maritime force comprising 155 ships and 80 aircraft today. The Coast Guard is poised to achieve its target force levels of 200 surface platforms and 100 aircraft by 2030. Raised on 1st February 1977, the Indian Coast Guard was envisioned to address emerging maritime challenges and safeguard India's expanding maritime interest. From modest origins, it has grown into a powerful, versatile and highly respected maritime force entrusted with maritime law enforcement, coastal security, search and rescue, marine environmental protection and humanitarian assistance. Bharatiya Tat Rakshak maintains a resolute vigil over 2 million square kilometers of exclusive economic zone and more than 11,000 kilometers of coastline. Aligned with the vision of Atmanirbhar Bharat and Make in India, the Indian Coast Guard continues its steady march towards self-reliance through the induction of indigenously built ships, aircraft, helicopters and advanced surveillance systems.
भारत और अरब देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून संयुक्त राष्ट्र के प्रासंगिक प्रस्ताव और अरब शांति पहल के अनुसार पश्चिम एशिया में न्याय संगत व्यापक और टिकाऊ शांति के लिए अपनी वचनबद्धता की फिर पुष्टि की है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अरब देशों के विदेश मंत्रियों और अरब लीग के महासचिव के साथ कल नई दिल्ली में भारत अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक में भागीदारी की। इस बैठक में एक संप्रभु स्वतंत्र और 1967 की सीमा पर आधारित एक व्यावहारिक फलिस्तीन का आह्वान किया गया। भारत और अरब देशों ने सूडान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपने समर्थन की फिर पुष्टि की। दोनों पक्षों ने भारत और अरब देशों के बीच बढ़ती राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के बीच के आदान प्रदान का स्वागत किया।
Moving on to sports, in Thailand Masters Badminton, Indian shuttler Devika Sehag will take on Go Jin Wei of Malaysia in the women's singles final at the Nimbipur Stadium in Bangkok today. The match is scheduled to begin at 12:10 p.m. Indian time. Earlier, Devika stormed into her maiden BWF Super 300 final with a straight game win over world number 35 Huang Yu-hun by 22-20, 21-13 in the semi-final yesterday. 20-year-old unseeded Indian Devika claimed her maiden BWF International Challenge title at the Malaysia International last year.
और रेनू बैडमिंटन के बाद क्रिकेट की बात कर लेते हैं। भारत ने 5 टी20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पांचवें और अंतिम मैच में न्यूजीलैंड को 46 रन से हरा दिया और श्रृंखला 4-1 से अपने नाम कर ली। तिरुवनंतपुरम में कल रात भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 271 रन बनाए। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया, जबकि कप्तान सूर्य कुमार यादव को श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला। और श्रोताओं, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम रुक करेंगे महानगरों की खबरों का, जिसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद से जुड़ी खबरें होंगी। तो रेनू, सबसे पहले चेन्नई में क्या है खास?
जी, researchers at IIT Madras developed a sustainable method to recover valuable metals from electronic waste using environment-friendly solvents derived from natural compounds. The researchers explored the use of deep eutectic solvents, which are liquid mixtures made from biodegradable natural substances capable of dissolving metals without harming the environment. They developed a green solvent using thymol derived from thyme and capric acid, which effectively dissolved copper metal. The dissolved copper was extracted using trisodium citrate, a non-toxic chemical, and subsequently used to synthesize copper nanoparticles with industrial and technological applications. The research was conducted by Professor Ranjit Bauri from the Department of Metallurgical and Materials Engineering, along with Professor Pushpa Vanam and Sinu Kurian, a PhD research scholar jointly affiliated with both departments. The findings were published in the Journal of Sustainable Metallurgy. Moving on to you, Farhat. Let's have some news from Delhi Metro.
जी रेनू, दिल्ली में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं धार्मिक पर्यटन से जुड़ी खबर से। दिल्ली सरकार राजधानी में धार्मिक पर्यटन और भजन क्लबिंग को बढ़ावा देने की दिशा में नई पहल शुरू करने जा रही है। दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने चेन्नई में आयोजित पर्यटन शिखर सम्मेलन 2026 के दौरान कहा कि सरकार धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पर्यटन को संगठित रूप से विकसित कर दिल्ली को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं दिल्ली यातायात पुलिस ने आज भारतीय नौसेना हाफ मैराथन के आयोजन को देखते हुए यातायात परामर्श जारी किया है। पुलिस ने बताया है कि सुबह से ही 4:45 से जो है आवाजाही जो है वो प्रतिबंध रहेगी और ये 9 बजे तक चलेगी और इसके लिए जेएलएन स्टेडियम, लोधी रोड, लाला लाजपत राय मार्ग, मथुरा रोड समेत कई संबंधित मार्गों पर यातायात बाधित रहेगा। और यातायात पुलिस ने दिल्लीवासियों से अनुरोध किया है कि इन मार्गों से यथासंभव बचें, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें और अपनी यात्रा पहले से योजना बनाकर ही तय करें। और इसके अलावा आपातकालीन वाहनों को निर्बाध मार्ग उपलब्ध कराया जाएगा। और वहीं 3:30 से दिल्ली मेट्रो हर 30 मिनट के अंतराल पर आज चलाई जा रही है।
मूविंग ऑन टू बेंगलुरु मेट्रो फरहत, कर्नाटका होम मिनिस्टर डॉ जी परमेश्वर अर्ज्ड अपॉन द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन टू फोकस ऑन सोशल रिफॉर्मेशन ऑफ इनमेट्स एंड मेक एफर्ट्स टू एसिमिलेट देम इन द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी। ही वॉज स्पीकिंग आफ्टर इनॉग्यूरेटिंग द सेंट्रल कमांड सेंटर एट द स्टेट प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेज डिपार्टमेंट हेड ऑफिस इन बेंगलुरु। द कमांड सेंटर विल बी एबल टू मॉनिटर द जेल पर्सनल फ्रिस्किंग द विजिटर्स एंड चेकिंग बैग्स and whether all the protocols followed as per the rule books of the prisons. Parmeshwar pointed out that lacuna in the responsibilities of jail staff leads to system collapse and hence the senior police officers must keep a tab on the lacunas in the system and mend it immediately. Making a specific remark, the minister pointed out that lacuna in responsibilities is responsible for prohibited things to enter the prison. He hoped that the central command center inaugurated by him will help keep a tab on the activities in the prisons across the state.
और इनो अब मुंबई का रुख कर लेते हैं। पश्चिमी रेलवे ने मेरा टिकट मेरी शान विकसित भारत के लिए मेरा योगदान शीर्षक से एक व्यापक जागरूकता और सोशल मीडिया अभियान शुरू किया है और इस अभियान का उद्देश्य डिजिटल और सोशल मीडिया के साथ साथ पश्चिमी रेलवे के सभी डिवीजनों में स्टेशन स्तर की गतिविधियों के माध्यम से यात्रियों को जागरूक करना है। इस पहल का लक्ष्य जिम्मेदार यात्रा व्यवहार और वैध टिकट के महत्व को उजागर करना है ताकि नागरिक एक विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। वहीं बृहन्मुंबई नगर निगम वृक्ष करण के सहयोग से 29वें मुंबई पुष्प महोत्सव का आयोजन वीरमाता जीजाबाई भोसले वनस्पति उद्यान और चिड़ियाघर बायकुला में 6 से 8 फरवरी 2026 तक आयोजित करेगा। इस महोत्सव में लगभग 5,000 पुष्पीय पौधे, फलों के पौधे और औषधीय पौधे प्रदर्शित किए जाएंगे। साथ ही थीम आधारित पुष्प सजावट और बागवानी से संबंधित स्टॉल भी यहां पर लगाए जाएंगे। 3 दिवसीय इस आयोजन के दौरान बागवानी कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। आगंतुकों के लिए प्रवेश निःशुल्क होगा और महोत्सव सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहेगा।
एंड मूविंग ऑन टू तेलंगाना, द भारतीय राष्ट्र समिति BRS प्रेसिडेंट एंड फॉर्मर तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैज कैरेक्टराइज्ड द नोटिसेस इश्यूड टू हिम इन द ऑनगोइंग फोन टैपिंग केस एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अ वायलेशन ऑफ लीगल प्रोसीजर्स। डिस्पाइट हिज शार्प क्रिटिसिज्म ऑफ द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एंड द जुबली हिल्स ACP, मिस्टर राव कन्फर्म्ड that he would be available for questioning at his Nandinagar residence in Hyderabad today afternoon, citing his responsibility as a former chief minister and leader of the opposition.
और अब कोलकाता का रुख करते हैं। कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर में कल अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस मनाया गया और इसके लिए एक शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्रीय विद्यालय कांचरापारा के लगभग 530 विद्यार्थियों ने चिड़ियाघर के सहायक निदेशक, रेंज अधिकारी, जीव विज्ञानी और आहार विशेषज्ञों के साथ एक संवादात्मक प्रश्नोत्तर सत्र में भाग लिया और इस अवसर को यादगार बनाने और जागरूकता बढ़ाने के लिए चिड़ियाघर में आने वाले सभी बच्चों को मुफ्त जेब्रा मास्क वितरित किए गए। महानगरों की खबरों के बाद अब महानगरों के मौसम का हाल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के मौसम की। आज न्यूनतम तापमान रहेगा 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। दिन में हल्की धूप खिलने की संभावना व्यक्त की गई है। मुंबई की बात करें तो बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा की आज संभावना है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। कोलकाता में भी बादल छाए रहेंगे और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
आपने दिल्ली का टेम्परेचर हमें बताया है और हमारा सीधा ध्यान गया है सूरज कुंड मेले की तरफ। तो बीइंग अ संडे विजिटर लिसनर्स, वी कैन ऑल विजिट द सूरज कुंड क्राफ्ट्स मेला टुडे। इट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल डे। मूविंग ऑन टू वेदर न्यूज फ्रॉम चेन्नई, इट इज एक्सपेक्टेड जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर विल बी अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 30 डिग्री। बेंगलुरु इज expected to have fog or mist. The minimum temperature is expected to be 16 degrees and the maximum will be around 29 degrees Celsius. And Hyderabad is expected to have fog or mist in the morning and partly cloudy sky later. The temperature will hover between a minimum of 18 degrees and a maximum of 31 degrees Celsius.
और इनु आज है पहली फरवरी और इतिहास में दर्ज कुछ घटनाओं का जिक्र कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात सन 1814 की, तो फिलीपींस में आज ही के दिन ज्वालामुखी फटने से करीब 1000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी।
एंड ऑन दिस डे दैट इज 1st of February इन द ईयर 1797 लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज स्वॉन इन एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फॉर अ सेकेंड टाइम इन इंग्लैंड। एंड ऑन द सेम डे इन द ईयर 1835 ईस्ट इंडिया कंपनी ऑब्टेन्ड दार्जिलिंग फ्रॉम द किंग ऑफ सिक्किम।
और 1881 की अगर बात की जाए तो दिल्ली के सबसे पुराने कॉलेज सेंट स्टीफन की आज ही के दिन स्थापना हुई थी। और सन 1884 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का पहला वॉल्यूम पब्लिश हुआ था। और बात अगर 1930 की जाए तो द टाइम्स ने पहली बार आज ही के दिन क्रॉस वर्ल्ड पजल को प्रकाशित किया।
On this day in the year 1956, Judge Sudhir Ranjan Das became the Chief Justice of India. In 1964, Judge Prahlad Balacharya Gajendra Gadkar became the Chief Justice of India. In 1964, on 1st of February, Unit Trust of India was established. And in 1985 on this day, Muhammad Azharuddin created a world record at Kanpur by hitting a century in each of his first three tests.
और रेनु थोड़ा सा पीछे जाएं तो 1977 की बात कर लेते हैं, भारतीय नौसेना तटरक्षक बल का आज ही के दिन गठन हुआ था।
जी बिल्कुल। और आज एक और बहुत अच्छा दिन है तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम अपने लिसनर्स को जरूर देना चाहेंगे। वी आर ऑब्जर्विंग द वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक स्टार्टिंग टूडे। इट इज एन एनुअल इवेंट observed during the first week of February. In designating the observance of the week in 2010, the UN General Assembly pointed out that mutual understanding and inter-religious dialogue constitute important dimensions of a culture of peace. It established World Interfaith Harmony Week as a way to promote harmony between all people regardless of their faith, recognizing the imperative need for dialogue among different faiths and religions to enhance mutual understanding, harmony and cooperation among people. The General Assembly encourages all states to spread the message of interfaith harmony and goodwill in the world's churches, mosques, synagogues, temples and other places of worship during that week on a voluntary basis and according to their own religious traditions or convictions.
और रेनु अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट और महत्वपूर्ण सेगमेंट की ओर, जहां हम याद करेंगे कुछ जानी मानी शख्सियतों को। तो सबसे पहले आपकी फेयरलिस्ट में कौन है?
सो टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग हैरी एडवर्ड स्टाइल्स, जो कि एक इंग्लिश सिंगर, सॉन्ग राइटर और एक्टर है, उनका बर्थडे। His musical career began in 2010 when he auditioned for the British singing competition, The X Factor. He was eliminated early on but was brought back to form the boy band One Direction. They earned 4 number one studio albums on the Billboard 200 and 4 top 5 singles on the Billboard Hot 100. And his self-titled debut album was released in 2017 and topped the charts of 14 countries. His debut single, Sign of the Times, was released earlier that year and topped the charts in 7 countries, including the UK singles chart. It also peaked at number 4 on the Billboard Hot 100 and was named Rolling Stone's Single of the Year. And aapko pata hai ki unhone Christopher Nolan's film Dunkirk, which came in the year 2017, usme bhi kaam kiya tha, which claimed critical and commercial success. And we have spoken so much about his song Sign of the Times. To kyun na isi gaane ko sun lete hai, sung by Harry Styles.
Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned, we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullets?
और श्रोताओं, आज ही के दिन हमें अलविदा कहा था भारतीय अमरीकी अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ कल्पना चावला ने। कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए 7 यात्री दल सदस्यों में से एक थी कल्पना। कल्पना की पहली अंतरिक्ष उड़ान STS-87 कोलंबिया स्पेस शटल से संपन्न हुई और इसकी अवधि 19 नवम्बर से 5 दिसम्बर 1997 थी। कल्पना की दूसरी और अंतिम उड़ान 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल से शुरू हुई और ये 16 दिन का मिशन था। उन्होंने अपने सहयोगियों सहित लगभग 80 परीक्षण और प्रयोग किए। वापसी के समय 1 फरवरी 2003 को शटल दुर्घटनाग्रस्त हुई और कल्पना समेत 6 अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई।
And you know what, Farhat, the memory is still imbibed, you know, because we were all watching this live on television jab wo log wapas space se earth mein enter ho rahe the. And here in India, the late astronaut is recognized as a national hero in India. And she was in space for 336 hours during the research mission. So today is the birth anniversary of William Clark Gable, who was an American film actor often referred to as the King of Hollywood. He had roles in more than 60 motion pictures in a wide variety of genres in a career that lasted 37 years, 3 decades of which was as a leading man. Gable died of a heart attack. His final on-screen appearance was of an Asian cowboy in The Misfits, which was released posthumously in 1961. And he progressed to supporting roles for Metro-Goldwyn-Mayer, and his first leading role in 1931's Dance, Fool's Dance was alongside Joanne Crawford, who requested him for the part. And Gable won the Academy Award for Best Actor for Frank Capra's It Happened One Night in 1934. He was nominated for the same award for his roles in Mutiny on the Bounty and Gone with the Wind, where he played the role of Rhett Butler opposite Vivian Leigh as Scarlett O'Hara. So here we are going to listen to the most iconic lines in cinema history, which Clark Gable is delivering as Rhett Butler in Gone with the Wind.
Take my handkerchief. Never in any crisis of your life have I known you to have a handkerchief.
Rhett, where are you going?
I'm going to Charleston. Back where I belong.
Please take me with you.
No. I'm through with everything here. I want peace. I want to see if somewhere there isn't something left in life of charm and grace. Do you know what I'm talking about?
No. I only know that I love you.
That's your misfortune.
Red. You go. Where shall I go? What shall I do?
Frankly, my dear, I don't give a damn.
और श्रोताओं, आज ही के दिन हमें अलविदा कहा हिमालयी इलाकों की खोज करने वाले पहले भारतीय नैन सिंह रावत ने। 19वीं शताब्दी के उन पंडितों में से थे वे जिन्होंने अंग्रेजों के लिए हिमालय के क्षेत्रों की खोजबीन की। नैन सिंह रावत कुमाऊं घाटी के रहने वाले थे। उन्होंने नेपाल से होते हुए तिब्बत तक के व्यापारिक मार्ग का मानचित्रण किया। उन्होंने सबसे पहले ल्हासा की स्थिति और ऊंचाई ज्ञात की और तिब्बत से बहने वाली मुख्य नदी सांगपू के बहुत बड़े भाग का मानचित्रण किया। नैन सिंह रावत को एक एक्सप्लोरर के रूप में याद नहीं किया जाता, बल्कि हिंदी में आधुनिक ज्ञान में आकांक्ष दर्पण नाम की एक किताब लिखने वाले वो पहले भारतीय थे और इसके लिए भी उन्हें याद किया जाता है। ये पुस्तक शोध कार्य करने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक ग्रंथ के समान है।
Today is the birth anniversary of John Ford, who was an American film director. He's renowned both for westerners such as Stagecoach, The Searchers, and The Man Who Shot Liberty Valance, as well as adaptations of classic 20th century American novels such as the film The Grapes of Wrath. His four Academy Awards for Best Director were in 1935, 1940, 1941, and 1952, which still remain a record for her. And one of the films for which he won the award was How Green Was My Valley, also which won the Best Picture. It was nominated for 10 Academy Awards, winning 5, famously beating Citizen Kane, Sergeant York, and The Maltese Falcon for Best Picture, while Ford won the Best Director Award. So, yahan par hum ek bahut hi acha dialogue from the movie How Green Was My Valley se lete hain.
Good morning, Mr.
Jonas.
Mr. Jonas, we have come to the right place indeed.
What can I do for you?
A man is never too old to learn, is it, Mr. Jonas?
No.
I was in school myself once, but no great one for knowledge.
Okay, what do you want?
How would you go about taking the measurement of a stick, Mr. Jonas?
By its length, of course.
And how would you measure a man? Would use a stick on a boy, one-third the size.
Tennis.
Now, you are good in the use of a stick, but boxing is my subject, according to the rules laid down by the good Marquis of Queensberry.
Good Ristisor.
And happy I am to pass on my knowledge to you.
और अब हम याद कर रहे हैं हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और दूरदर्शन कलाकार अवतार किशन हंगल को. वर्ष 1967 से हिंदी फिल्म उद्योग का हिस्सा रहे हंगल ने लगभग 225 फिल्मों में काम किया. उन्हें फिल्म परिचय और शोले में अपनी यादगार भूमिकाओं के लिए जाना जाता है. एके हंगल 50 वर्ष की उम्र में हिंदी सिनेमा में आए. उन्होंने 1966 में बासु चटर्जी की फिल्म तीसरी कसम और शागिर्द में काम किया. तो आइए सुन लेते हैं उन्हीं की फिल्म शोले से उनका ये डायलॉग.
क्या बात है बेटा, ये कहाँ लिए जा?
इमाम साहब,
कौन ये बोझ नहीं उठा सकता भाई? जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? बाप के कंधों पर बेटे का जनाजा. इससे भारी बोझ कोई नहीं है. मैं बूढ़ा ये बोझ उठा सकता हूँ और तुम एक मुसीबत का बोझ नहीं उठा सकते. भाई मैं तो एक ही बात जानता हूँ, इज्जत की मौत जिल्लत की जिंदगी से कहीं अच्छी है. बेटा मैंने खोया है, मैंने फिर भी यही चाहूंगा कि ये दोनों इसी गांव में रहें. आगे आपकी मर्जी.
Today is the birthday of Anwar Hussain, known more by his first name Anwar, who is a playback singer who rose to prominence in Hindi playback industry because of the uncanny resemblance of his voice with that of singer Mohammad Rafi. And here we're going to listen to a very beautiful song sung by Anwar, Nazar Se Phool Chunti Hai Nazar.
Nazar se phool chunti hai nazar, ahista, ahista, ahista. आहिस्ता
मोहब्बत रंग लाती है मगर, मोहब्बत रंग लाती है मगर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता.
बहुत ही खूबसूरत गीत. और अब हम बात कर लेते हैं भारतीय फिल्म अभिनेता जिनका आज जन्मदिन है, जैकी श्रॉफ की. 9 भाषाओं की फिल्मों में काम कर चुके हैं जैकी श्रॉफ ने. अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1982 में आई फिल्म स्वामी दादा से की. अगले साल सुभाष घई ने उन्हें अपनी फिल्म हीरो में लीड रोल के तौर पर कास्ट किया, जिसमें जैकी की हीरोइन मीनाक्षी शेषाद्री थी. ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुआ और इसके बाद जैकी ने कई छोटी बड़ी फिल्मों में काम किया, जिसमें उनकी अंदर बाहर, युद्ध, रामलखन, कर्मा, जवाब हम देंगे, सौदागर, किंग अंकल खलनायक रही. तो आइए सुन लेते हैं उन्हीं की कुछ यादगार फिल्मों से प्यारे से गीत.
शिकवे हैं, किस्से हैं, बात
बातें हैं, बातें भूल जाती है, यादें याद आती है, बातें भूल जाती है, यादें याद आती है, ये यादें किसी दिल जानम के चले जाने के बाद आती है।
तो कार्यक्रम की जो एंडिंग हम कर रहे हैं, बहुत ही प्यारे से गीत, यादें याद आती हैं और बातें भूल जाती हैं, लेकिन आप हमारी बातों को मत भुलाइएगा क्योंकि कल हम फिर आपसे मिलेंगे एक नए अंक के साथ। इसके साथ ही रेनू और फरहत को दीजिए कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाजत।
स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात, आवर हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन डियर लिसनर्स, हैव अ सुपर्ब डे।
नमस्कार।